हरे कृष्णा कृष्ण बलराम मंदिर इस्कॉन के भाग्यशाली भक्तों भक्ति शास्त्री के भगवत गीता यथारूप के अध्ययन के छठे अध्याय में आप सबका हार्दिक स्वागत है। छठे अध्याय का नाम है ध्यान योग। और ये ध्यान योग आज हम शुरू करने जा रहे हैं। पांचवें अध्याय के अंत में 27वें और 28वें श्लोक में सूत्र रूप में ध्यान योग का वर्णन किया गया कि वो भी मुक्ति प्रदान करता है। जैसे निष्काम कर्म योग हृदय को शुद्ध करेगा, ज्ञान में जाएगा, आत्मा की अनुभूति होगी तो मुक्ति होगी, ऐसे ध्यान योग से भी मुक्ति होती है ये भगवान ने कहा। तो उसको विस्तार से समझाने के लिए छठा अध्याय शुरू होता है। तो छठे अध्याय में भगवान अष्टअंग योग को विस्तार अष्टअंग योग का विस्तार से वर्णन करेंगे। तो छठे अध्याय में क्या है, अष्टअंग योग का विस्तार से वर्णन है। परंतु अर्जुन भगवान को कहता है कि ये अष्टांग योग करना संभव नहीं है। तो सारी शिक्षा में पूरा भगवान समझाएंगे परंतु वो सबके लिए संभव नहीं है, इसलिए उसको छोड़कर भक्ति को ही करना उत्तम है। सारे अध्याय का भाव ही है, पूरे अध्याय का भाव क्या है कि अष्टांग योग असंभव है सामान्य व्यक्ति के लिए, इसलिए उसको त्याग कर भक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए। अष्टांग योग करने से पहले एक तो निष्काम कर्म योग करके हृदय को पवित्र करना चाहिए। पहला अष्टम योग से पहले क्या अधिकार किसका है अष्टम योग का, पहले कोई कहे अष्टम योग का अधिकारी कौन है? तो निष्काम कर्म योग से जिसने पहले अपने हृदय को शुद्ध किया है, और दूसरा अधिकार है जिसका मन अपने वश में है, और तीसरा है भौतिक चीजों से न प्रभावित हो और न ही उसका उससे कोई आसक्ति हो, जो जो भौतिक भोग से प्रभावित न हो और भौतिक चीजों में आसक्ति न हो। तीन बातें कम से कम हो तो अष्टांग योग कर सकता है। क्या पहला है? निष्काम कर्म योग के से हृदय की शुद्धि करे, मन को पूर्ण वश में करने का सामर्थ्य हो और भौतिक चीजों के प्रति बिल्कुल आसक्त ना हो और उनसे प्रभावित भी ना हो, ना आसक्त हो ना प्रभावित हो। अब इस छठे अध्याय का पहले चार श्लोकों में, जो पहले चार श्लोक हम आज करेंगे, कर्म फल में अनासक्त होने से योग में आगे बढ़ सकते हैं। योग में सफलता के लिए कर्म फल का त्याग आवश्यक है, ऐसे समझ लीजिए। योग में प्रगति के लिए कर्म फल का त्याग आवश्यक है। ये पहले चार श्लोक है। तो कर्म फल का त्याग और कौन करता है? इससे पहले हम पढ़ के आया कौन करता है? निष्काम कर्म योगी भी कर्म फल का त्याग करता है, और इसको भी कर्म फल का त्याग तो करना ही है। दूसरा विभाग है 5 से 9 श्लोक तक, 5 से 9 तक है जो योग आरूढ़ स्थिति में है। योग आरूढ़ का मतलब योग की सिद्धि प्राप्त कर ली है, उसके लिए कोई कार्य करना आवश्यक नहीं है, वो भले कार्य को त्याग दे। योग आरूढ़ स्थिति में कार्य को त्यागा जा सकता है। और फिर लंबा विभाग है 10 से 32 तक, 10 से 32 तक योग का अभ्यास कैसे करना चाहिए और कौन कौन से उसके ऊपर स्तर है, योग का अभ्यास का साधन और स्तर। और 33 से 36 तक चंचल मन को वश में करना अति आवश्यक है। ये है 33 से 36, चंचल मन को वश में करना अति आवश्यक है। और 37 से 45 असफल योगी की गति, असफल योगी जो योग में सफल नहीं हुआ पूरा, उसका क्या होगा, क्या गति होगी। और अंतिम 2 श्लोक 46 और 47 सर्वश्रेष्ठ योग, उत्तम योग। तो पहले विभाग में 2 बातें मुख्य है। पहला विभाग क्या है? हाँ, तो उसके लिए पहला है कि वास्तविक संन्यास, 2 चीजें क्या है, पहला है वास्तविक संन्यास, वास्तविक संन्यास वो है जिसमें अनासक्ति हो, अनासक्ति, और किसी में ममता न हो कि मेरा है। और कर्म के फल को भोग की इच्छा न हो। तो इसका अर्थ है कि इसमें एक चीज नहीं आई, वो क्या नहीं आया, सन्यासी को कर्म त्यागना जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि कर्म को छोड़े, कर्म को छोड़ना जरूरी नहीं है, परंतु कर्म के फल का त्याग, ममता और भोगतापन को छोड़ना। ममता का मतलब मेरा है, मेरापन और भोगता दोनों को, और हमारे प्रभुपाद जी के इन 4 श्लोकों का भाव यह है कि कृष्ण भावना निस्वार्थता का उत्तम स्थान है, उत्तम स्तर है। क्या? कृष्ण भावना निस्वार्थ, स्वार्थ का मतलब मेरे लिए काम करना, निस्वार्थ का उत्तम स्तर है। क्योंकि भक्त केवल कृष्ण को ही प्रसन्न करना चाहता है, अपनी कोई स्वार्थ नहीं है। तो वो असल में योगी भी है, सन्यासी भी है, इसका अर्थ ये है। अब हम आते हैं, पहले श्लोक को पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। ध्यान योग, पहला श्लोक भगवान श्री कृष्ण अपने आप बोल रहे हैं, पढ़ते हैं। श्री भगवान वाच अनाश्रित करम फलम कार्यम करम करोति यः स सन्यासी च योगी च न निराग्निर्न चाक्रियः। तो भगवान श्री कृष्ण के वचन हैं, पहली लाइन में अनाश्रित कर्म फलम, इसका मतलब कर्म के फल में का कोई आशा नहीं है, इसका मतलब कर्म फल से त्याग, कर्म फल में कोई आशा नहीं है, आसक्ति नहीं है, इच्छा नहीं है, पहली बात, ठीक है। कार्यम कर्म करोती है, और जो कार्य उसको निर्धारित है वो करता रहता है, कर्म के फल में आश्रित नहीं है, आसक्त नहीं है, परंतु सारे जो काम्य कर्य उसको काम्य कर्म है, जो निर्धारित उसके कर्म है वो करता रहता है। सन्यासी, वो सन्यासी भी है। अच्छा, सन्यासी के लिए दूसरा शब्द क्या आपको बताया था? सन्यासी ज्ञानी, ज्ञान योगी, सन्यासी और तीसरा सांख्य योगी, तीनों का एक बात है, ठीक है। तो यहां सन्यासी का मतलब कर्म योगी, और योगी च, यहां योगी कौन सा है? क्योंकि विषय ध्यान योग का है, तो वो ध्यान योगी भी है, सन्यासी भी है। कौन कौन ध्यान योगी और सन्यासी दोनों है? पहले की दो बातें हैं, कौन है ऐसा? जो कर्म के फल में आसक्त नहीं है परंतु कार्य करता है, वो सन्यासी भी है, योगी भी है। इसका मतलब योगी और सन्यासी दोनों को कर्म फल का त्याग करना है, मुख्य बात है ये। अब जो अंतिम लाइन है उसमें न निरअग्नि, निरअग्नि का यह क्या है कि सन्यास जब कोई लेते हैं ना तो उसको यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, वो यज्ञ को त्याग देता है, अग्नि का अर्थ है यहाँ यज्ञ। तो जो सन्यास ले वो यज्ञ को छोड़ दे तो उसको कोई पाप नहीं लगता है, वो यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमको रोज यज्ञ करना है, कोई एक निर्धारित यज्ञ है घर में, हम पांच यज्ञ रोज करते हैं, अतिथि यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, ये सब यज्ञ हैं, और अगर स्वाहा वाला यज्ञ भी अगर सन्यासी नहीं करे तो उसके ऊपर कोई पाप बंद पाबंदी नहीं है, कोई उसके ऊपर दोष नहीं लगेगा। पर इस यहां लिखा है न निराग्निर, मैं सन्यासी हूं, मैं यज्ञ नहीं करूंगा, परंतु कर्म कर्म के फल में आ सकते हैं तो वो सन्यासी नहीं है। केवल यज्ञ छोड़ दे वो सन्यासी नहीं है, परंतु जो कर्म का फल त्यागे वो सन्यासी है। अब ये बात समझ में आई, इस श्लोकों के आधार पर ये बात समझ में आ रही है, सन्यासी कौन है? जो कर्म का फल त्यागे, न के केवल यज्ञ को छोड़ दे, यज्ञ को छोड़ दे कर्म का फल न त्यागे तो सन्यासी नहीं है, ये तो एक बात हुई। और न चक्रिय, अब कोई आंखें बंद करके ऐसे बैठे मैं कोई काम नहीं करता हूं लेकिन कर्म का फल न त्यागे तो वो योगी भी नहीं है। आंखें बंद करके ध्यान में तो बैठे परंतु कर्म का फल न, कोई काम नहीं करूंगा लेकिन फल में आ सकती है तो वो योगी नहीं है। अब इस श्लोक का अर्थ दोबारा अपने आप पढ़िए, समझ में आता है। देखो मुख्य शब्द क्या है? फल में आशा न हो, कर्म के फल में आशा न हो, फिर भले अपने कर्तव्य कर्म करता रहे, तो सन्यासी भी है योगी भी है। परंतु केवल अग्नि न जलाए और कह मैं सन्यासी हूं, हवन न करे, यज्ञ न करे कि मैं आज सन्यासी, वो सन्यासी नहीं, और कर्म का फल छोड़े नहीं, आंखें बंद करके ध्यान का ढोंग करे, वो भी योगी नहीं। तो मुख्य बात पे इस श्लोक में क्या हो गई, पहली लाइन मुख्य है, क्या है? अनाश्रित कर्म फल, जो अनाश्रित कर्म फल कार्यम कर्म, अनाश्रित कर्म फलम, कर्म के फल में अनाशक्त है, आश्रित नहीं है, ये मुख्य है। अब प्रभुपाद जी का अनुवाद पढ़ो।
जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनाशक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है।
अब देखो शब्दों का सब समझ में आ रहा है, कहाँ क्या पढ़ा। प्रभुपाद ने एक शब्द ज्यादा लिखा है कि सच्चा योगी है, सिर्फ लिखा है। सच्चा योगी लिखा है ना, वास्तविक असली योगी लिखा है ना एक शब्द, वो सिर्फ असली शब्द एक श्लोक में नहीं है। प्रभुपाद ने वो वास्तविक योगी है, वो असली योगी है। और एक लाइन, दूसरी लाइन का क्या भाव लिखा है, जो अपने कर्तव्य कर्म करता रहता है, कर्तव्य कर्म करता रहता है। अब चक्रवर्ती पाद का तात्पर्य मैं पढ़ रहा हूं। छठे अध्याय में चंचल मन को वश में करने का साधन बताया गया है। तो छठे अध्याय का विषय क्या है, चंचल मन को वश में करने की विधि। ओ योग की परिभाषा एक शब्द में क्या है, चित्त वृत्ति निरोध योग उच्यते। चित्त वृत्ति का निरोध करना, चित्त की वृत्ति का निरोध करना, निरोध करना मतलब रोकना, चित्त वृत्ति निरोध करने को ही योग कहा है पतंजलि ने। जैसे कोई काम करते हैं उसके लिए कोई तो चीज औजार क्या होना चाहिए, कोई तो योग के लिए साधन है मन, उसको करना है वश में। योग का सारा केंद्र है मन वश को वश में करना। तो इस छठे अध्याय में चंचल मन को वश में करने की विधि बताई गई है, जिसमें अष्टांग योग के द्वारा इंद्रियों के और मन के ऊपर संयम किया जाता है। यह है इस अध्याय का मुख्य लक्ष्य। अब वो बात कर रहे हैं जो आपको पहले लिखा है, अधिकारी कौन है अष्टांग यज्ञ के लिए, योग के लिए, जो निष्काम कर्म करके हृदय को शुद्ध करे। इसलिए लिखा है अष्टांग योग का आरंभ करना करे, परंतु तत्काल एकदम निष्काम कर्म योग को न छोड़े। इसका मतलब क्या है, निष्काम कर्म योग करते हुए अष्टांग योग को आरंभ करे। जब तक सिद्धि न हो तब तक कर्म करता रहे, क्योंकि क्या करेगा कर्म, निष्काम कर्म क्या करेगा, हृदय की शुद्धि, वो अति आवश्यक है योगी के लिए। तो अब बात एक लाइन में क्या हुई, निष्टांग योग आरंभ करने वाले को एकदम निष्काम कर्म नहीं छोड़ना चाहिए, करता रहना चाहिए, ठीक है। तो कौन से कार्य करने चाहिए, अब काम क्या करना चाहिए, ये प्रश्न उठता है ना। तो इस श्लोक में शब्द क्या है, कार्यम कर्म करोति यह, हाँ कार्यम कर्म करोति का यह का अर्थ है, कार्यम कर्म का मतलब है जो निर्धारित हमारे कार्य है, जिसको छोड़ा हमसे अलग नहीं किया जा सकता है। शास्त्र ने जो निर्धारित कार्य किए हैं हमारे लिए, परंतु उसके फल में कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए, कर्म करे पर फल में आसक्ति न हो, तो उसको सन्यासी कहा जाता है, क्योंकि वो सारे कर्म का फल त्याग देता है। हाँ जी, कौन सा कर्म? नेम के जो कर्म है, रोज के संध्या वंदन आदि है, उनको करता रहना चाहिए। भगवान के निमित्त जो नेम के रोज के कर्म है। अब श्री प्रभुपाद जी कहाँ, अब चक्रवर्ती पाद कहते हैं इसी को योगी भी कहते हैं, जो ऐसे कर्म का फल त्यागते और अपना कर्म करता रहे इसको योगी भी कहते हैं। जिसको सन्यासी कहते हैं वो योगी भी है। बोला योगी क्यों है? क्योंकि उसका मन इंद्रियों के विषय के भोग से उठ गया है। वो योगी इसलिए है कि फल ही त्याग दिया तो क्या भोग करेगा। तो उसका मन कर्म के फल के भोग से मुक्त है, इसलिए वो योगी भी है। केवल कोई कर्म को छोड़ दे, जैसे अग्निहोत्र को छोड़ दे, तो वो सन्यासी ऐसा नहीं माना जाएगा। केवल अग्निहोत्र छोड़े सन्यास का कर्म का और कर्म का फल न त्यागे तो सन्यासी नहीं है। आंखें बंद करके केवल बैठे, बाहर के कार्य न करे, परंतु कर्म का फल न त्यागे तो योगी भी नहीं। ये अंतिम लाइन का अर्थ है। अब श्री प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ते हैं। इस अध्याय में भगवान अष्टंग योग, जिसके द्वारा मन और इंद्रियों को वश में किया जाता है, वो विस्तार से बताएंगे। ये है अध्याय का सारांश। पहली लाइन ये लिखा है प्रभुपाद ने, ठीक है। फिर एकदम प्रभुपाद जी कहते हैं कलयुग के सामान्य लोगों के लिए ये करना संभव नहीं। दूसरी लाइन में कहते हैं कलयुग के सामान्य लोगों के लिए ये करने के लिए संभव नहीं। भले इस अध्याय के अंदर अष्टांग योग के लिए भगवान ने शिक्षा दी है, परंतु भगवान कर्म योग या कृष्ण भावना में के कर्म को उत्तम मानते हैं। ये दूसरी लाइन को देखो, यहां वही बात हो जाएगी क्या? निष्काम कर्म योग या कृष्ण भावना में कर्म ज्ञान से श्रेष्ठ है, पहले ये करके आए ना। अब एक लाइन और लिख दो, निष्काम कर्म योग या कृष्ण भावना में कर्म ध्यान योग से भी भगवान की नजर में उत्तम है, क्योंकि सामान्य है व्यक्ति के लिए कलयुग में ध्यान योग करना संभव नहीं है। तो भाव क्या हुआ कि इसको छोड़ के भक्ति करना ही अच्छा है, यह है भाव। अब प्रभुपाद जी कहते हैं क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं, कोई मेरे को ध्यान योग से शत्रुता तो है नहीं। इस संसार में सबको अपने परिवार घर उसको चलाना है तो कुछ काम करना पड़ेगा, और वो स्वार्थ से काम करेगा। भाई स्वार्थ है ना, मेरा घर है मेरा परिवार है तो स्वार्थ हो गया ना, तो स्वार्थ से करेगा कर्म करेगा। तो ये स्वार्थ उसका भोग का व्यक्तिगत भी हो सकता है या विस्तृत भी हो सकता है। व्यक्तिगत मतलब एक घर का, विस्तृत का मतलब समाज का, देश का, लेकिन है तो स्वार्थ ही स्वार्थ। तो इसलिए ये योग का अभ्यास संभव नहीं है। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं कृष्ण भावना में सिद्धि प्राप्त करने के लिए, सफलता के लिए जो नापदंड है, नापदंड समझते हैं, जो क्राइटेरिया का मतलब जिसको कसौटी, जो कसौटी है वो है कृष्ण के लिए कार्य करना, परंतु उसके फल को भोगने की इच्छा न करना। अब ये आप ये एक लाइन लिख लीजिए, कृष्ण भावना में सफलता और सिद्धि के लिए कृष्ण के लिए काम करना है, फल में कोई भोग की इच्छा नहीं। अब यही बात तो सन्यासी के लिए भी थी, वो क्या करेगा कि कर्म के फल का त्याग करे, लेकिन किसके लिए कर्म करे उसको पता नहीं है, लेकिन यहां तो पता है कि भगवान के लिए काम करना है, तो ये उससे अच्छा हुआ ना। अब प्रभुपाद जी ये लाइन लिखा ना, अब लाइन लिखा सफलता के लिए, फिर क्या कहना चाहते हैं, सबको कृष्ण के लिए काम करना चाहिए, सबको कृष्ण भावना में काम करना चाहिए, ये उनका दायित्व है। ये दायित्व है कौन सा शब्द है श्लोक में, कार्यम कर्म, ये उसका कर्तव्य है। क्यों है, क्यों दायित्व है, क्योंकि जीव भगवान का ही अंश है, तो अंश को अंशी की सेवा ही करनी है। अब प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं, इसको कहते हैं उपमा दे रहे हैं। क्या उपमा दे रहे हैं, शरीर के अंग शरीर की संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं, हाथ काम करता है, आंख काम करती है, पांव काम करता है, पूरे शरीर की संतुष्टि के लिए, तो कृष्ण परिपूर्ण है, हम उसके अंश है, तो हमको कृष्ण की संतुष्टि के लिए काम करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने जो सिद्धांत बताया उस सिद्धांत के लिए उदाहरण दे रहे हैं, ये उदाहरण है, इसको लिखें उदाहरण। कोई भी शरीर का अंग अपनी संतुष्टि के लिए कार्य नहीं करता है, परंतु पूरे शरीर की संतुष्टि के लिए कार्य करता है। जो भी काम करें, पांव से कहीं जाएं, हाथ से कुछ कमाएं, परंतु सारे शरीर के लिए है, तो सब जीवों को कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। ये इसके लिए ये उदाहरण दिया है, एनालॉजी है इसको कहते हैं। अब प्रभुपाद जी कहते हैं देखिए ये लाइन लास्ट लाइन लिखने से आपका प्रश्न है वो उसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्या है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सन्यासी और योगी दोनों कैसे है, ये आपका छठे अध्याय का प्रश्न होगा। है ना, क्या प्रश्न है, पूर्ण सन्यासी है, ठीक है, सन्यासी भी है योगी भी है, कैसे कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सन्यासी और योगी दोनों कैसे है। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं देखो इस प्रकार, ये पूरा लिख के इस प्रकार, जब जीव भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करता है जो पूर्ण है, और अपने लिए अपनी संतुष्टि के लिए या स्वार्थ के लिए कार्य नहीं करता है, तो वो पूर्ण सन्यासी और सिद्ध योगी है, ये लिखा है ना। तो ये जो लाइन है ये भक्त के लिए, लेकिन लिखना इसको ऊपर से पड़ेगा, कहां से, कसौटी क्या है कृष्ण भावना की, वहां से शुरू करके और यहां तक लिखेंगे तब आपके प्रश्न का उत्तर पूरा होगा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति योगी और सन्यासी है, पूर्ण योगी है, सफल सन्यासी है, कैसे, क्योंकि वो कृष्ण की संतुष्टि के लिए काम करता है, कोई स्वार्थ नहीं है, फल में कोई इच्छा नहीं है, वो भगवान का ऐसे सेवा करता है जैसे शरीर के अंग सारे शरीर की सेवा करते हैं, क्योंकि भगवान पूर्ण है, जीव उसका अंश है, तो इसलिए वो पूर्ण सन्यासी और पूर्ण योगी है। ये बात हो गई। अब प्रभुपाद जी अंतिम लाइन जो है अपने श्लोक की उसकी परिभाषा लिख रहे हैं। कभी कभी कृत्रिम रूप से देखा जाता है कि सन्यासी अपने आप को मुक्त मानता है और भौतिक कार्य सारे छोड़ देता है, अग्निहोत्र यज्ञ नहीं करता है, परंतु अभी तक उसका स्वार्थ है। प्रभुपाद कहते अभी तक उसका स्वार्थ है, और क्या स्वार्थ है, उसका स्वार्थ है निराकार ब्रह्म में लीन होना, वो तो भगवान ही बनना चाह रहा है, तो स्वार्थ है ना। अभी तो आप एक लाइन में इसको ऐसे लिखें, ज्ञानी सन्यासी सारे कर्म छोड़ भी दे, परंतु वो उसका स्वार्थ ब्रह्म में लीन होने का सबसे बड़ा स्वार्थ है, सबसे बड़ा उसका स्वार्थ है। और ऐसे ही योगी, प्रभुपाद जी इस इच्छा को, कौन सी इच्छा को, ब्रह्म में लीन होने की इच्छा को कहते हैं ये भौतिक इच्छाओं में सबसे बड़ी इच्छा है। अब दूसरे की बात कर रहे हैं, इस प्रकार से कोई योगी भी योग का अभ्यास करे, आधी आंखें खोल करके नाक के ऊपर टिका कर भौतिक सारे कार्य छोड़ दे, परंतु क्या चाहता है, योग की सिद्धि चाहता है, योग की सिद्धियां प्राप्त हो जाए, मैं बहुत बड़ा योगी कहलाऊं, तो इसकी इच्छा तो हो ही गई ना, तो फिर ये योगी नहीं है। और कृष्ण भावना वाला इसलिए दोनों से महान है वास्तव में, क्योंकि उसकी कोई स्वार्थ है नहीं, इच्छा है ही नहीं। अब इतना सारा आपने पढ़ा एक चैतन्य चरितमृत का श्लोक कहोगे तो ये सारा प्रभुपाद जी का तात्पर्य उसके ऊपर टिका हुआ है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि सकल अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अतेव, सारा देखो इसके ऊपर है कि नहीं, पूरे का पूरा तात्पर्य इस श्लोक के ऊपर है कि नहीं। अब ये श्लोक आपको समझ में आएगा तो ये तात्पर्य समझोगे ऐसे कैसे प्रभुपाद जी ने लिखा है, क्योंकि उनको इच्छाएं तो बनी हुई है, एक कहता है ब्रह्म में लीन हो जाऊंगा, दूसरा कहता है सिद्धियां प्राप्त करूंगा, तो स्वार्थ तो है ही ना। लेकिन कृष्ण भगवान भक्त को कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, कृष्ण की संतुष्टि के लिए काम कर रहा है, अपना कोई स्वार्थ नहीं है, इसलिए वो योगी और सन्यासी वास्तव में है। तो ये श्लोक लिखेंगे तो आपकी बात समझा जाएगा कि आपने इसको समझा है। ये है प्रभुपाद जी का आंतरिक भाव, जब ये लिख रहे हैं तो ये श्लोक प्रभुपाद जी के मन पटल पे चल रहा है, उनके हृदय में ये श्लोक आया है तब ये शब्द लिखे, ठीक है। सब स्वार्थ के पीछे हैं, परंतु प्रभुपाद लिखते हैं परंतु जो कृष्ण भावना में कार्य करता है वो पूरण के लिए संतुष्टि के लिए कार्य करता है, न के व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। कृष्ण भावना भावित को व्यक्तिगत संतुष्टि की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। फिर दोबारा वही शब्द आ गया है, कौन सा शब्द आया, कसौटी, फिर दोबारा वही शब्द आया आपका जो प्रश्न का उत्तर है, देखो क्या लिखा है, हिज क्राइटेरियन ऑफ सक्सेस, कृष्ण भावना भक्त के सफलता की कसौटी है कृष्ण की संतुष्टि, एकमात्र कृष्ण की संतुष्टि है, इसलिए वो पूर्ण सन्यासी और सिद्ध सन्यासी और सिद्ध योगी है। और फिर प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु परम सन्यासी के उत्तम उदाहरण है, उनकी ये प्रार्थना का एक श्लोक दिया है, न धनम न जनम न सुंदरिम कवितम व जगदीश कामय मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति अहितुकि, ये श्लोक दिया है। इसका क्या चाहिए कि मेरे व्यार व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं है, केवल भक्ति चाहिए भगवान आपकी बस। तो ये श्लोक पूर्ण सन्यासी है। तो अब इस श्लोक से आपको क्या लेना है, इस श्लोक से आपके एक प्रश्न का उत्तर हो रहा है, कौन सा प्रश्न है वो फिर दोबारा बोलिए। ठीक है, आगे भी पढ़ते हैं लेकिन यहां तक तो हो गया। अब इस श्लोक का कोई सारांश बताएगा थोड़े में, श्लोक में क्या है? इस श्लोक सारा आपने कर लिया, अब इसमें आपने क्या समझा, कोई बताएगा?
कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति होता है हमेशा भगवान को संतुष्ट करने के लिए कार्य करते
हैं। पहले श्लोक के शब्दों का अर्थ आता है ये देख लो, फिर आगे बढ़ो। तो सच्चा योगी और सच्चा सन्यासी होने के लिए क्या चाहिए? सच्चा योगी और सच्चा सन्यासी होने के लिए निष्काम कर्म योग को जल्दी नहीं छोड़ना चाहिए और कर्म के फल में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, तभी सच्चा सन्यासी और योगी हो सकता है। दो बातें, ठीक है? तो कसौटी क्या है पूर्ण सन्यासी और पूर्ण योगी की? पहला, पहला भगवान तो है नहीं इनके लिए, ये तो योगियों के लिए तो कुछ और ही है। क्या है पहला? कर्म के फल को त्याग दे। दूसरा, अपना कर्तव्य कर्म करता रहे। और तीसरा, केवल अग्नि को न छोड़े और केवल कार्य को न छोड़े। ये श्लोक में इतने शब्द हैं। श्लोक के आधार के ऊपर सच्चा सन्यासी और योगी वो है जो कर्म के फल को त्यागे, कर्म करता रहे, केवल अग्नि न छोड़े, केवल काम न छोड़े। ये श्लोक का भाव है। अब कर्म योग अष्टंग योग से बेहतर है, ये प्रभुपाद ने लिखा है ना, हमने पढ़ा ना, कर्म योग अष्टंग योग से बेहतर क्यों? क्योंकि पहला प्रभुपाद ने लिखा कि क्योंकि मन और इंद्रियों को कलयुग में वश में करना सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं, और हरेक व्यक्ति स्वार्थ से ही कार्य करता है, परम अपने परिवार के लिए या काम के स्वार्थ से काम करता है। वो स्वार्थ चाहे व्यक्तिगत हो चाहे विस्तृत हो। तो जो सन्यासी और योगी है, ध्यान योगी है, उनका स्वार्थ है, ये कैसे सिद्ध करोगे? सन्यासी स्वार्थ ही है, कैसे बताओगे? क्योंकि ब्रह्म में लीन होना चाहता है, ये बड़ी इच्छा है। योगी स्वार्थी है, कैसे बताओगे? वो सिद्धियां चाहता है, इसलिए दोनों जो है उनसे कर्म योगी अच्छा है। अब ये दो हो गए। अब है सिद्धि की कसौटी क्या है? कृष्ण भावना में कार्य करना, फल की इच्छा नहीं, केवल सेवा करना। उदाहरण क्या है प्रभुपाद ने दिया? शरीर के अंग शरीर की सेवा करते, ये उदाहरण है। इसलिए सबको कृष्ण भावना के कार्य करना उनका निर्धारित, उसका प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, उसका ये वाह। इसलिए सच्चे योगी और सच्चे सन्यासी की परिभाषा क्या हुई? जो केवल कृष्ण की संतुष्टि के लिए कार्य करें, न के स्वार्थ के लिए, वो ही सच्चे सन्यासी और सच्चे योगी हैं। तो सारांश क्या निकला? कृष्ण भावना भावित भक्त पूर्ण सन्यासी और पूर्ण योगी है, और उदाहरण चेतन महाप्रभु और ये श्लोक न धर्म धर्म, ये पहले श्लोक का सार हो गया, ठीक है? अब पहले श्लोक को आप अच्छी तरह से अपने आप कर लोगे, हम दूसरे श्लोक में जाएं। चलिए दूसरे श्लोक पे चलते हैं। यम संन्यासमिति प्राहुर योगं तं विधि पांडवा नहि असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। यम संन्यासम इति प्राहु का मतलब जिसको सन्यासी कहा जाता है, प्राहु का मतलब कहा जाता है। योगम तम विधि पांडव, पांडव हे अर्जुन उसको तुम योगी समझो, वही योगी है जो सन्यासी है वही योगी है। क्यों? क्योंकि दोनों को एक ही काम करना है। वो क्या है? नहीं असन्यस्त संकल्पो, इस लाइन को पहले समझो। असन्यस्त संकल्प, संकल्प किसका काम है? मन का संकल्प है, इच्छा, संकल्प इच्छा को कहते हैं जो मन का कार्य है। असन्यस्त का मतलब जिसने इच्छा नहीं छोड़ी है। असंकल्प जो शब्द है, असन्यस्त संकल्प का मतलब है जिसने इच्छाएं नहीं छोड़ी है। कार्य करता है लेकिन अभी इच्छा बनी हुई है कि कुछ मिलेगा, तो वो योगी कभी नहीं हो सकता। योगी भवती कश्चन, नहीं असन्यस्त संकल्पो योगी भवती कश्चन, कभी भी योगी नहीं हो सकता है। दोनों के लिए आवश्यक क्या है? कर्म के भोग की इच्छाओं का त्याग करना। ये करेंगे तो सन्यासी भी वही है, योगी भी वही, दोनों में कोई अंतर नहीं। पढ़िए प्रभुपाद जी क्या अनुवाद लिखा है।
एक पांडव पुत्र जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तो योग अर्थात परम ब्रह्म से युक्त होना चाहिए, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता।
कोई कभी योगी नहीं हो सकता। तो इच्छा त्याग करने के लिए कौन सा श्लोक में शब्द है? असन्यस्त संकल्पो, ये शब्द है, इसके ऊपर है बल दिया हुआ सारा। बाकी तो लाइन सीधा है, इसको सन्यासी कहते हैं, वो योगी कभी नहीं हो सकता है जो इच्छा नहीं त्यागता है, दोनों एक ही है। ठीक है, प्रभुपाद ने एक और शब्द लिखा, दोबारा पढ़िए पढ़िए।
हे पांडव पुत्र जिसे सन्यास कहते हैं उसे भी तुम योग अर्थात,
योग अर्थात
परम ब्रह्म से युक्त होना,
परम ब्रह्म से
युक्त होना।
तो योग का अर्थ है जीव का भगवान से संबंध स्थापित करना या जुड़ना, तो उसकी परिभाषा प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। ठीक है, अब बलदेव विद्याभूषण का तात्पर्य मैं पढ़ रहा हूं। ये पंखा चला दे, वो तो बंद हो गया ठंडा वाला। बलदेव विद्याभूषण कहते हैं, पहला, सन्यास का अर्थ है, बलदेव विद्याभूषण कहते हैं सन्यास शब्द जो है उसका अर्थ है ज्ञान में स्थिर होना। सन्यासी किसको कहते हैं? जो ज्ञान में स्थिर है। किसके ज्ञान में? आत्मा के ज्ञान में। तो उसका लक्षण क्या है? उसका लक्षण है इंद्रियों के सारे कार्यों को रोक देता है। ये हमने कल या परसों श्लोक पढ़े थे, दो अंतराराम संत्र ज्योतिर पढ़े थे ना, ज्ञान में जो पूर्ण है वो सुख आत्मा में लेता है, आनंद आत्मा में लेता है, पढ़े थे ना ये श्लोक। हाँ, आत्मा राम हो आत्मा सा, ये श्लोक पढ़े हैं, ये होंगे 20-21 होगा मेरे ख्याल में, 24-25 जो भी है। ये इसका भाव है, इस शब्द जो मैं कह रहा हूँ इसका भाव ये है। क्या है? संन्यास उसको कहते हैं जो ज्ञान में स्थिर है, उसका लक्षण होता है सारे इंद्रियों के कार्यों को रोकना। और योगी किसको कहते हैं? जो अपने चित्त की वृत्ति का निरोध करता है, वो अंदर का। ज्ञानी बाहर की इंद्रियों को, वो अंदर की इंद्रियों को रोकना चाहता है। योगी चित्त वृत्ति का निरोध करता है, ये दोनों की परिभाषा है। संन्यास की परिभाषा क्या है? ज्ञान में स्थिर होकर इंद्रियों को विषयों से रोकना और आत्मा में आनंद लेना। और योगी का उद्देश्य है चित्त की वृत्ति का निरोध करके परमात्मा की अनुभूति करना। असल में ये उसका उद्देश्य है, चित्त की वृत्ति का निरोध करना। अब ये प्रश्न उठाते हैं एक कि भगवान आपने कहा कि सन्यासी के, ज्ञानी के लिए भी और योगी के लिए भी कर्म योग जरूरी है, ये आपने बोल दिया, बोलते ही आ रहे हैं बार बार भगवान के, वो अच्छा है। क्या अच्छा है? कर्म योग अच्छा है। तो आपने ये कह दिया तो कर्म योग करेंगे तो इंद्रियां से तो काम लेना ही पड़ेगा ना भाई, कर्म करेंगे तो इंद्रियां चलेंगी तब करेंगे ना। तो फिर बताइए कि ये इंद्रियों की वृत्ति और ज्ञान योग ये आपस में कैसे, भाई आप कहते काम करना ही नहीं है सन्यासी तब हो, और कहते चित्त को रोक दो, और फिर कहते हैं कि निष्काम कर्म योग करो, तो ये कैसे समझ में आए, ये प्रश्न उठता है। तो कहते हैं पांडव, हे पांडव, कर्म योग जो है लिखा है, कर्म योग जिसको जानकार ज्ञानी कहते हैं सन्यास, वही अष्टंग योग है। भगवान ने क्या कह दिया? तीनों, देखो इस श्लोक में यही बोला है ना, इस श्लोक में क्या बोला है देखो, जो योग है वही वही सन्यास है, वही योग है, दोनों में कोई अंतर नहीं। दूसरी लाइन क्या है श्लोक की पढ़ो, सर योगी च सन्यासी च, वो सन्यासी भी वही है योगी भी वही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जब योगी प्राहु यम सन्यासम इति प्राहु योगम तम विधि पांडव, जिसको सन्यासी कहते हैं वही योगी है, तो दोनों एक ही है, कोई अंतर नहीं है। अब इसको समझाते हैं, वो कहते किसी आदमी को हम कहते हैं शेर है, किसी को कहते यह शेर है, इसका ये मतलब नहीं है ये शेर है, लेकिन शेर जैसी इसमें ताकत है, ये शेर जैसी इसमें वीरता है, क्योंकि ये समानता है। तो इनमें भी एक समानता है, योग में और सन्यास में समानता है, कर्म योग में समानता है। क्या समानता है? सन्यस्त संकल्प, ये है समानता। समानता क्या है तीनों में? तीनों में समानता एक है, और वो लिखो संकल्प सन्यस्त। संकल्प सन्यस्त का मतलब है कर्म के फल की इच्छा को त्यागना, चाहे निष्काम कर्म योगी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे ध्यान योगी हो, सबको एक काम करना पड़ता है, और वो है सन्यस्त संकल्प। और जो इसको नहीं छोड़ेगा वो योगी और सन्यासी नहीं हो सकता। तो एक शब्द पक्का, अभी एक अंग आप संस्कृत का याद करो, क्या? सन्यस्त संकल्प। संकल्प मतलब इच्छा, कर्म के भोग की को जब तक नहीं त्यागेगा तब तक ना सन्यासी है ना योगी, और दोनों एक है, क्योंकि दोनों को छोड़ना पड़ता है, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों में समानता ये है। कोई ये इच्छा छोड़ेगा वो योगी भी है सन्यासी भी है, जो भी उसका साधन है वो करे, लेकिन ये तो जरूरी है। अब बलदेव विद्याभूषण कहते हैं असल में बात बड़ी कही जा रही है, सन्यासी है योगी है कह रहे हैं, क्योंकि एक जो है इंद्रियों से कार्य भी नहीं करता है सन्यासी है, इंद्रियों से कार्य ही नहीं करता है क्योंकि फल भोगना ही नहीं है, और दूसरा योगी है वो चित्त की वृत्ति को रोक दिया है, बाहर से कुछ अंदर आने नहीं देता है, प्रत्याहार कर दिया है। ये सब इनको नमस्कार है, परंतु मुख्य बात कही जा रही है दोनों के लिए कि काम करते रहो। इसका मतलब लिखा क्या है, गौण वृत्ति में ये असल में कर्मयोगी की ही परिभाषा है, ये शब्दों का सिर्फ फेर है, लेकिन काम कर्मयोगी का ही है। मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूं ये शब्द, आप देखिए, क्योंकि कर्म की फल की इच्छा को त्याग दिया है तो ज्ञान ने, ज्ञानी ने छोड़ दिया है कर्म के फल की इच्छा का त्याग, और योगी ने चित्त की वृत्ति का निरोध कर दिया है, भोग को छोड़ दिया है, कोई इच्छा नहीं है भोग की, प्रत्याहार कर दिया है। ये हमने कल हमने पढ़ा था, स्पर्शान बाह्य बाही बाहर से इंद्रियों को रोकता है। अब कहते हैं यही तो कर्मयोगी के लिए कहते हैं, तो वास्तव में ये कर्मयोगी की ही महिमा है, नाम दूसरे हैं। लिखा है गौण वृत्ति, सेकेंडरी सेंस ऑफ वर्ड्स इज गौण वृत्ति। गौण वृत्ति, अब दो प्रकार की वृत्ति का नाम पड़े, एक मुख्य वृत्ति, एक गौण वृत्ति। गौण वृत्ति का मतलब सेकेंडरी, और गौण वृत्ति और मुख्य वृत्ति, गौण लक्षण और मुख्य लक्षण। आप वो भी ठीक है, लेकिन आपने भक्ति रसामृत सिंधु में जो अनाभिलाषिता शून्य शून्य पढ़ा था ना, इसमें दो विभाग है, एक को कहते हैं मुख्य लक्षण, एक को गौण लक्षण, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण, इसके दो विभाग है ना। स्वरूप लक्षण उसको कहते हैं अगर वो निकाल दिया जाए तो वो चीज ही नहीं रहेगी, और गौण लक्षण ये है वो निकाल दिया जाए तो उसकी उत्तमता नहीं रहेगी। जैसे उत्तम भक्ति की परिभाषा क्या है, हमारा जो पढ़िए श्लोक, इसमें स्वरूप लक्षण है अनुकूलन कृष्ण अनुशीलनम, अगर ये निकाल दोगे तो भक्ति ही नहीं होगी, तो भक्ति खत्म हो गई। और जो ऊपर दो हैं वो है गौण तटस्थ लक्षण, वो निकाल देंगे तो क्या होगा, ये सामान्य भक्ति हो जाएगी, उत्तम भक्ति नहीं रहेगी। एक उदाहरण देते हैं, उसमें आप बताइए इसमें गौण क्या है और मुख्य क्या है। उदाहरण मैं देता हूं, जैसे धर्मात्मा इस मंदिर आता है इसलिए वो अच्छा भक्त है, और इसलिए उसको अच्छा उसको ऑफिस मिली हुई है। अब इसमें आप बताइए कि मुख्य लक्षण क्या है और गौण लक्षण क्या है। मंदिर आना है मुख्य लक्षण, मंदिर आएगा तभी भक्त बनेगा ना, तभी ऑफिस मिलेगा, तो मंदिर आना मुख्य लक्षण है, और दूसरा जो है वो तो सेकेंडरी है कि मंदिर आएगा तो ये होगा, और ऑफिस तब मिलेगा जब कोई अच्छा काम करेगा, तो वो उसकी अच्छाई को दिखाता है। तो ऐसे इसमें जो ये सब नाम बड़ा है संन्यास और योग, वास्तव में कर्म को त्यागता है वो, भगवत कर्म ही कर रहा है। इसका बलदेव विद्याभूषण का भाव है कि वो भक्त ही है, भगवान की सेवा ही कर रहा है, नाम सिर्फ दूसरे हैं। अब श्री प्रभुपाद जी का तात्पर्य, प्रभुपाद जी ने तीन शब्द साथ लिखे हैं। देखो हमने अभी तीन ही की बात की है, अभी तक हमने तीन की बात की ना, निष्काम कर्म योग की बात की, संन्यास ज्ञान की बात की, और ध्यान की बात की, तीन योगों की, तीनों को ये समान बता दिया है। हाँ, और तीनों में समानता किसके कारण थी, संन्यास्त संकल्प के कारण, ठीक है। अब प्रभुपाद जी इन तीनों को कैसे ले रहे, पहला संन्यासी लिखा, फिर योगी लिखा, फिर भक्त लिखा, तीनों हो गया ना, तो इसमें सन्यासी तो हो गया ज्ञानी, योगी हो गया ध्यानी, और भक्त हो गया कर्मी कर्मयोगी। निष्काम कर्म योगी और भक्त एक ही बात होगी, कृष्ण भावना में काम करना। अब तीनों में, तीनों को करना क्या है? प्रभुपाद जी कहते हैं तीनों के लिए उनको अपने स्वरूप का पता लगाना पड़ेगा और उसके अनुरूप कार्य करना पड़ेगा। उसको अपने स्वरूप का पता लगाना पड़ेगा और उसके अनुरूप कार्य करना पड़ेगा, ये लिखा है ना। स्वरूप का पता लगाओ, उसके अनुरूप कार्य करो। ये मिला लिखा है कि नहीं? देखो किताब खोलो। स्वरूप को जानना और उसके अनुरूप काम करना। अब इसको ज्ञानी को कैसे स्वरूप जानना है? तब कहेंगे वो आत्मा की तो खोज कर रहा है, तो स्वरूप तो आत्मा को ही ढूंढ रहा है ना। ज्ञानी क्या कर रहा है? आत्मा को ढूंढ रहा है। योगी क्या करेगा? आत्मा को ढूंढेगा, अंदर देखेगा। और भक्त क्या करता है? योगी परमात्मा में चले, आत्मा से परमात्मा में जाए आगे। और भक्त क्या करता है? भगवान की सेवा कर रहा है। तो तीनों को अपने आत्मा, अपने स्वरूप को समझना है और उसके अनुरूप कार्य करना है। प्रभुपाद जी कहते तीनों का, तीनों के लिए मुख्य बात क्या है, इसका मुख्य अर्थ क्या है? अपने स्वरूप को समझना, जीव के स्वरूप को, लंबा शब्द लिखा है, अपने स्वरूप, जीव के स्वरूप को समझना, उसके अनुरूप कार्य करना, ऐसे ही लिखा है। और कुछ लिखा है? और क्या उसके अनुरूप कार्य करे, बस सीधा सा शब्द है, ठीक है ना। अब प्रभुपाद लिखते हैं जीव की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, वो भगवान की तटस्थ शक्ति है। ये तीनों को समझना चाहिए। वो जब भौतिक प्रकृति के लपेट में आ जाती है तो उसको बदजीव कहते हैं, और जब कृष्ण की सेवा में लगता है, अपने को चेतन शक्ति मानता है, तो वो अपने वास्तविक स्वाभाविक स्थिति में है जीवन की। प्रभुपाद शब्द लिखे हैं, अर्थ एक ही है। बदजीव कब है? जब माया के वशीभूत है, और जब कृष्ण की सेवा में लगता है तो अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जान जाता है। इसलिए जब कोई पूर्ण ज्ञान में है, देखो ये हो गई बात ज्ञानी की, किसकी बात होगी? सन्यासी की। जब कोई पूर्ण ज्ञान में है तो वो सारे इंद्रिय भोग के कार्यों को छोड़ देता है। अथवा वो क्या करता है? इंद्रिय तृप्ति के काम को छोड़ता है। ये किसकी परिभाषा लिखी है प्रभुपाद ने? सन्यासी की। ये लाइन है सन्यासी की परिभाषा, जो ऊपर लिखा है ना सन्यास, पहली लाइन में सन्यास लिखा है, उसकी परिभाषा है ये। इसलिए जो पूर्ण ज्ञान जिसको है, ज्ञानी तो सन्यासी है, तो जिसको पूर्ण ज्ञान है वो सारे इंद्रिय तृप्ति के काम को छोड़ देता है। अब प्रभुपाद हमें योग पे आ रहे हैं, देखो इसके बाद लिखना है योग के लिए। और योगी भी तो यही अभ्यास करते हैं, अपनी इंद्रियों को भौतिक आसक्ति से परे कर लेते हैं, दूर कर लेते हैं, तो योगी भी तो यही करते हैं। तो ये जो यहाँ लिखा है ना, देयरफॉर मतलब इसके उपरांत, यहां से ये है पहला सन्यासी के लिए, फिर योगी के लिए हो गया। देखो प्रभुपाद के लिखने में कितनी, जो पहले तीन शब्द लिखे हैं उनको अब समझा रहे हैं, पहले सन्यासी को समझाया, फिर योगी को, अब आ रहे हैं भक्त के ऊपर। परंतु जो कृष्ण भावना में है उसको तो इंद्रियों को बाहर लगाने का समय ही नहीं है। वो तो केवल कृष्ण के लिए ही सेवा करता है। अब ये तीन जो ऊपर नाम है, तीन की परिभाषा आ गई ना, सन्यासी, योगी और भक्त। अब भक्त की और इनकी परिभाषा में अंतर क्या है? वो रोकते हैं, वो इंद्रियों को भोग से रोकते हैं, और ये इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाता है। अब ऐसे ही हमने पहले पांचवें अध्याय में पढ़ा था, ज्ञानी और कर्मयोगी समान है दोनों, क्योंकि दोनों का लक्ष्य एक है, जड़ में पानी देना एक और जड़ को ढूंढना, और फिर दूसरे उसके लिए कौन सा एक हमने सिद्धांत निकाला था, भौतिक 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 अनासक्त कृष्ण आसक्त, ये वही बात है कि नहीं। देखो सन्यासी भौतिक अनासक्त, योगी भौतिक अनासक्त, भक्त कृष्ण आसक्त, तो दोनों का अर्थ तो एक ही हो गया ना, हुआ कि नहीं हुआ। भौतिकता से अनासक्त हो या कृष्ण में आसक्त हो, अर्थ तो एक ही है भाई। वो छोड़ते क्यों है, भौतिक सुख क्यों छोड़ते हैं, कृष्ण को चपाने के लिए, भगवान को, आत्मा को, परमात्मा को पाने के लिए, और इसने तो परमात्मा को पा ही लिया है, तो दोनों काम तो एक ही कर रहे हैं ना। अब प्रभुपाद ने जो पहले लिखा था, तीन उन तीन की परिभाषा पूरी हो गई। अब प्रभुपाद जी सारांश दे रहे हैं जो पहले श्लोक के तात्पर्य दिया था, दोबारा दे रहे हैं। इसलिए कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सन्यासी और योगी एक ही समय है, वो योगी भी है और सन्यासी भी है, वो दोनों है। इसलिए जो सन्यासियों को, ज्ञानियों को जो त्याग करना है इंद्रियों का, या योगियों को जो मन को वश में करना है, वो कृष्ण भावना भावित भक्त के लिए अपने आप हो जाता है, ऑटोमेटिकली सर्व्ड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, वो कृष्ण भावना में अपने आप हो जाता है। अब प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, एक लाइन लिखते हैं, अगर कोई व्यक्ति अपना स्वार्थी स्वभाव नहीं छोड़ सकता है, स्वार्थी स्वभाव का मतलब कर्म के, इंद्रियों के भोग का स्वभाव नहीं छोड़ सकता है, तो वो योगी भी नहीं बन सकता है, सन्यासी भी नहीं बन सकता है, ये दोनों बेकार है, उसका ज्ञान उसका योग दोनों व्यर्थ है। ये लिखा ना, क्या लिखा है, अब सेल्फिश नेचर के लिए क्या लिखा है, हाँ स्वार्थ का, ठीक है, अब प्रभुपाद जी इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं। जीवन का वास्तविक उद्देश्य है, जीवन का अथवा जीव आत्मा का वास्तविक उद्देश्य है स्वार्थ का त्याग करना, स्वयं संतुष्टि को, स्वार्थ को त्याग के छोड़कर भगवान को संतुष्ट करना। आई बात समझ में, क्या लिखा है, स्वार्थ स्वयं संतुष्टि के स्वार्थ को छोड़कर भगवत संतुष्टि करना, ये है जीव का, सब जीवों के लिए ये। इसलिए कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को कोई इच्छा नहीं होती है अपने व्यक्तिगत भोग के लिए, इस वो सदा ही भगवान के को आनंद देने की सेवा में लगा रहता है। अब प्रभुपाद जी कहते जिनको भगवान का पता नहीं है, जो भगवान को नहीं जानते हैं, वो अपने स्वयं संतुष्टि के कार्यों में लगे रहते हैं। और इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है प्रभुपाद ने, क्या लिखा है, क्योंकि नहीं नहीं कृष्ण भावना नहीं है इधर, क्योंकि कोई निष्क्रिय नहीं रह सकता, क्योंकि कोई निष्क्रिय नहीं रह सकता, या तो कृष्ण के लिए क्रिया करो और नहीं तो अपने लिए करो, निष्क्रिय रह नहीं सकते हो, ठीक है। इसलिए सारे उद्देश्य कृष्ण भावना में अपने आप पूर्ण हो जाते हैं, हमारा सकृत्या हमारा सक्रिय होना भी पूरा हो जाता है, योगी और सन्यासी के कार्य भी पूरे हो जाते हैं, इसलिए कृष्ण भावना परिपूर्ण है। तो इस श्लोक में हमने तीन शब्दों का अर्थ समझा है और तीनों की समानता समझिए। कौन से तीन शब्दों की समानता समझिए? ज्ञान, योग और भक्ति। उनमें समानता क्या है? वो समान कैसे प्रभुपाद ने तीनों को समान बताए हैं? हाँ जी, दो में इंद्रियों के भोग को छोड़ना और एक में इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, ये समानता बताइए। तीसरा श्लोक पढ़ रहे हैं। आरुक्षोर मुनिर योगम कम कर्म कारणम उच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमक कारणम उच्यते। अब यहाँ जो योग का आरंभ करता है उसके लिए कर्म आवश्यक है, कर्म योग आवश्यक है। जो ध्यान योग का शुभ आरंभ करता है उसके लिए कर्म योग आवश्यक है, और जो योग की सिद्धि को प्राप्त कर चुका है उसको कर्म छोड़ने में कोई दोष नहीं है। ये श्लोक के दोनों भाव का अर्थ है, ठीक है। अब पढ़िए प्रभुपाद ने क्या लिखा है।
अष्टांग योग के नौ साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्धि रूप से लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहलाता है।
सीधा सा है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। अब चक्रवर्ती पाद एक प्रश्न उठाते हैं, तो क्या अष्टांग योगी सारी उम्र निष्काम कर्म करता रहेगा क्या? तो कहते नहीं, ये श्लोक बता रहा है आरंभ में अष्टांग योगी को निष्काम कर्म करना है हृदय की शुद्धि के लिए, और जब योग की सिद्धि पे पहुंच जाए तो कर्म को छोड़ दे। क्यों? फिर कर्म उसको विचलित करेगा उसके ध्यान में, क्यों? सिद्धि हो गई तो धारणा ध्यान में आ गया, तो अंदर परमात्मा को देखा है, तो फिर काम कैसे करेगा? ध्यान भी लगाए काम करे ये नहीं कर सकता है। तब उसको काम उसके सफलता में बाधा बनता है तो कर्म को छोड़ देता है। ये श्लोक का भाव है। इसका अर्थ ये कि जब तक पूर्ण सिद्धि न हो जाए तब तक हृदय शुद्ध न हो तब तक कर्म करता रहना चाहिए। अब श्री प्रभुपाद लिखते हैं, प्रभुपाद जी पहले इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी पहले योग की परिभाषा लिख रहे हैं। क्या लिखा है योग की परिभाषा? भगवान के साथ संबंध स्थापित करना, जोड़ने को योग कहते हैं। इसके बाद प्रभुपाद जी एक शब्द लिख रहे हैं जो हमको सीखना है। दूसरी लाइन पढ़ो, क्या लिखे? इसकी तुलना योग की सीढ़ी से दी गई है। तो आज सीढ़ी के शब्द का अर्थ समझ लीजिए। और तीसरा तीसरी लाइन भी पढ़ दे। इसका अर्थ ये योग की सीढ़ी अधम अवस्था का अर्थ ये है विक्रम, विक्रम जो विक्रमी है वो विक्रमी से फिर हो जाएगा कर्मकांडी, कर्मकांडी से कर्म क्या फिर हो जाएगा कर्मयोगी, फिर ज्ञान योगी, फिर ध्यान योगी और फिर भक्ति योगी। अब इसके बाद प्रभुपाद लिखते हैं इसको तीन विभाग में बांटा जा सकता है, उनके तीन नाम दिए जा सकते हैं। देखो प्रभुपाद ने यहाँ तीन ही नाम दिए हैं, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। और जो आरंभ में उसको योग आरुरुक्ष कहते हैं और जो ऊपर पहुंच गया उसको योग आरूढ़ कहते हैं। अब यहां तक पढ़ने के बाद इसके बाद प्रभुपाद जी अष्टांग योगा का वर्णन कर रहे हैं, उसमें बाद में जाते हैं। आज इतना पक्का समझ लो, योग एक है, योग शब्द एक है। भगवान मानो चौथे मंजिल पे भगवान बैठा है और हम नीचे ग्राउंड फ्लोर पे है, वहां तक जाने के रास्ते को योग कहते हैं। अब कोई व्यक्ति पहले मंजिल पे चढ़ गया, उधर बैठ गया, आगे नहीं बढ़ा, तो उसको कहेंगे कर्म योगी है। जो दूसरी मंजिल पे चला गया वो ज्ञान योगी, तीसरे में गया वो ध्यान योगी, और चौथे में पहुंचा वो भक्ति योगी। तो योग एक सीढ़ी का नाम है। सीढ़ी के कौन से स्तर पे खड़ा है वो उसका नाम है। दिल्ली से वृंदावन आने के रोड का नाम है योग। कोई फरीदाबाद में है, कोई पलवल में है, कोई कोसी में है, और कोई वृंदावन पहुंच गया। अब देखिए जब निकलते हैं दिल्ली से कहते हैं वृंदावन जा रहे हैं, लेकिन अभी फरीदाबाद पहुंचे हैं, बैठे हैं वहां, वो खा रहे हैं कुछ, नाश्ता कर रहे हैं। अब इसका मतलब अभी तक वो पहुंचे नहीं है जहां जाना चाहिए, तो उसको कहेंगे कर्म योगी है। जैसे कोई आगे आया पलवल तक, टोल पे खड़ा हो गया, रुक गया थोड़ी देर के लिए, रोड पे खड़ा है, इसका मतलब वृंदावन जा रहा है लेकिन खड़ा रोड पे है, तो इस रोड का नाम योग है। और जो पड़ाव है उनका नाम अलग अलग, योग का नाम उनको दिया गया है, अलग योग नहीं है, योग एक है। ये बात समझ में आई? इसको कहते हैं योग की सीढ़ी। ये एक विशेष अपने आप में हमारा विषय है, इसके ऊपर चर्चा, 6 अध्यायों में योग की सीढ़ी का वर्णन। वो सीढ़ी बनाते हैं, एक सीढ़ी है जो सीढ़ी से जाते हैं, एक लिफ्ट है, वो चौथे माले सीधी जाती है नीचे से। भक्ति जो है लिफ्ट वाला मार्ग है सीधा, तो इसका अलग चर्चा होगी। अब प्रभुपाद जी आ रहे हैं, योग की सीढ़ी का वर्णन किया, 3 विभाग कर दिया, अब एक पढ़ते जाएंगे और टुकड़े टुकड़े आते जाएंगे, इकट्ठे करते जाएंगे, फिर योग की सीढ़ी को बनाएंगे, ठीक है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं जहां तक अष्टांग योग का प्रश्न उठता है, जिसमें ध्यान तक पहुंचना है, प्राणायाम करना है, अभ्यास करना है, आसन करने हैं, ये सारा शारीरिक व्यायाम है और ये सारा भौतिक, क्या शब्द क्या लिखा है, ये सारे के सारे सकाम कर्म है, ये सारे सकाम कर्म है। ये आप कैसे पब्लिक को कहोगे सकाम कर्म है? सारे लोग आसन प्राणायाम काय के लिए कर रहे हैं? स्वस्थ होने के लिए, तो सकाम कर्म है ना, स्वस्थ हो जाए, बीमारी खत्म हो जाए, सारे स्वास्थ्य प्रभुपाद ने इसको लिखा है, ये सारे सकाम कर्म है। होना ये चाहिए कि इंद्रियों का संयम करके, संयम करें तब सिद्धि को प्राप्त करेगा। और जब वो सिद्धि पे, ध्यान पे पहुंच जाता है, तब फिर मन को विचलित करने वाले सारे कार्यों को रोक देता है। अब प्रभुपाद जी कर रहे हैं तुलना अष्टांग योगी की, परंतु कृष्ण भावना भाविक व्यक्ति वो तो आरंभ से ही ध्यान में लगा हुआ है, क्योंकि सदा कृष्ण का ध्यान करता है, उसका तो सकाम से कुछ लेना ही नहीं है, वो तो कृष्ण के ध्यान में आरंभ से ही लगा हुआ है। अभी तक प्रभुपाद जी अब तुलना कर रहे हैं अष्टांग योगी की कृष्ण भावना भावित भक्त से, क्योंकि वो कृष्ण की सेवा में लगा रहा है, इसलिए उसकी सारे भौतिक कार्य अपने आप छूट गए। अब चौथा श्लोक आज के इस विभाग का पढ़ के पूरा करते हैं। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्वसंकल्पसन्यासी योग आरूढ़स्तदुच्यते। योग आरूढ़ उसको तब कहेंगे जब उसमें तीन लाइन है आगे, उसको योग की सिद्धि की अवस्था पे पहुंचा हुआ मानेंगे। जो जब यदा जब न इंद्रिया अर्थेषु कर्मसु अनुसज्जते, इंद्रिया अर्थेषु कर्मसु अनुसज्जते, इंद्रिया अर्थेषु कर्म यदा ही न सज्जते, जब सज्जते का मतलब सज्जते का मतलब सज्जते आ सकते, सज्जते माने आ सकते। जब व्यक्ति इंद्रियों के सुख में आसक्त नहीं है, यदा ही जब निश्चित रूप से न इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के भोग के लिए नहीं, न कर्मसु, इंद्रियों के भोग के लिए जब नहीं कर्म करता है, जब व्यक्ति इंद्रियों के भोग के लिए कार्य नहीं करता, उसमें आसक्त नहीं है, इंद्रिय भोग के कार्य में जब कोई आसक्त नहीं है, एक नंबर, एक नंबर दो, सर्व संकल्प सन्यासी, जिसने सारी इच्छाओं का त्याग कर दिया है, भोग की इच्छाओं का त्याग कर दिया है, उसको योग आरूढ़ मानते हैं। तो योग आरूढ़ कौन है? जिसने इंद्रियों के भोग के कार्य और इंद्रियों के भोग की इच्छा को त्याग दिया, वो योग आरूढ़ है। ये योग आरूढ़ की परिभाषा है। न तो वो इंद्रियों के विषय में आ सकते हैं, जैसे कान का विषय हो या आंखों का विषय हो, और न ही कार्य में, न काम के, न इंद्रियों के विषय में, न कार्य में आ सकते, दोनों से मुक्त है। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, प्रभुपाद जी तो योग आरूढ़ को तो पहले से ही बाहर फेंक के सीधा लिखते हैं, जब व्यक्ति पूर्ण रूप से भगवान की दिव्य सेवा, प्रेममयी सेवा में लगता है, वो अपने आप में संतुष्ट हो जाता है, सुखी हो जाता है, आनंदित हो जाता है, और इसलिए उसको इंद्रिय तृप्ति की या या सकाम कर्म की कोई इच्छा नहीं है। अब प्रभुपाद जी ने श्लोक के जो योग आरूढ़ के लिए इतना बड़ा परेशानी है, उसको आसान कर दिया। क्या कर दिया? भगवान की प्रेममयी सेवा में लगने से उसको इतना आनंद आता है कि अब इंद्रियों के भोग की इच्छा ही नहीं रह गई। अब इन दोनों में अंतर क्या है? प्रभुपाद ने ये ऐसे क्यों लिखा? वो है नकारात्मक, योग आरूढ़ वाला है नकारात्मक, और ये है सकारात्मक, वहां रोकना है और यहां करना है, ये अंतर है। अच्छा, फिर प्रभुपाद जी यहां बार बार भक्ति को क्यों ला रहे हैं? आप प्रचार करें तो आप कहें योग जो है उसकी ऊपर की जो सीढ़ी का जो लक्ष्य है वो भक्ति है। तो जब नाम ही योग है तो योग के पहले ऊपर वाली जगह का पहले बात करें ना, बीच में क्यों रुके? इसलिए प्रभुपाद जी बार बार हमारे को योग के परम लक्ष्य को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, फिर वही बात लिखते हैं जो पहले कर चुके हैं। देखो दोबारा वही बात है, ये अगर कृष्ण की सेवा में इंद्रियां नहीं लगेंगी तो इंद्रियां निश्चित रूप से भोग के कार्यों में लगेंगी, क्योंकि इंद्रियां निष्क्रिय नहीं हो सकती। कृष्ण भावना नहीं होंगे तो सदा के लिए हम या तो व्यक्तिगत सुख के लिए कार्य करेंगे अथवा विस्तृत परिवार के लिए सुख के लिए कार्य करेंगे। कार्य तो करना ही पड़ेगा। परंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कुछ भी भगवान कृष्ण की संतुष्टि के लिए कर सकता है, इसलिए वो पूर्ण रूप से इंद्रिय तृप्ति से मुक्त है, विरक्त है। और जिसको ये अनुभूति नहीं है वो भौतिक इच्छाओं को त्याग करने का मैकेनिकल यांत्रिक का प्रयास करके एक योग के किसी एक आधे सीढ़ी तक पहुंचता, सीढ़ी के किसी एक स्तर पे पहुंचता है, तो वो यांत्रिक रूप से सीढ़ी के किसी एक स्तर पे पहुंचता है। यांत्रिक रूप से लिखा है उनको। आप भक्ति रसामृत सिंधु में योग सिद्धियों के लिए क्या लिखा है? एक विदेशी आया यहाँ, प्रभुपाद ने लिखा है, उसने कहा जो योग में सिद्धियां हैं आठ, ये तो विज्ञान ने आज कर लिए। आकाश में जहाज उड़ रहा है हल्का होके, पहाड़ के अंदर से रास्ते बन गए हैं, तो ये तो योग की सिद्धियां तो सारी जो है यांत्रिक हो गई अभी। तो योग सिद्धि का सुख भक्ति के सुख के समान नहीं है। तो यहां अपने चार श्लोक आज पहला विभाग, उसका लक्ष्य क्या था? योग में प्रगति के लिए कर्म फल त्याग, हाँ, डिटैच वर्क आवश्यक है। तो ये विभाग हमारा आज पूरा हुआ। अब आपसे एक, क्या कल जैसे हमारा कोई प्रश्न जिज्ञासा तो नहीं है?